بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کامیاب فیملی کی چوتھی کلاس ہے کہ جس میں ہم ان نکات کی طرف گفتگو کر رہے ہیں کہ جو انسان کے زندگی کو ایک میاں بیوی کی زندگی کو پررنگ بناتی ہے. یعنی جس آیت کو ہم نے محور بنایا ہے, جس آیت کو ہم نے اپنا مرکز بنایا ہے, جس پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں مودت کی بحث ہے کہ مودت کیسے پیدا ہوگی میاں بیوی کے درمیان, وہ کیسے پرورش پائے گی, وہ کیسے رشد کرے گی, آگے بڑھے گی اور ایک مضبوط ریلیشن شپ ان کا قائم ہوگا کہ وہ کامیاب فیملی کہلائے. اس حوالے سے ہم نے کچھ نکات بیان کیے تھے, جس میں سب سے پہلا نقطہ جو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ میاں بیوی کو کون سے کام ایسے ہیں جو انجام دینے چاہیے, کون سے کام انہیں نہیں انجام دینے چاہیے. وہ تمام نکات ہم نے بیان کیے تھے. اس حوالے سے اعتماد کی ایک گفتگو تھی کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے شکر کی بحث کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان شکر کا ان سے پایا جانا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا شکر ادا کریں ایک دوسرے سے, تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ پر رنگ ہو, اس میں محبت میں اضافہ ہو. ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اختلافات کی بحث بھی کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان, ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کچھ چیزیں مختلف ہیں, کیونکہ مرد خود ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. جیسا کہ میں بتاتا ہوں, بھائی بہن ایک گھر میں ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, بہنیں بہنوں سے مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح میاں بیوی کی اسی طرح ہے کہ میاں بیوی ایک بے عنوانی مرد اور ایک بے عنوانی خاتون, انہیں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جو کہ اسٹڈی کے مطابق جو چیزیں جمع کی گئی ہیں, جو اکثر دیکھی گئی ہیں, وہ یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اس لیے میاں بیوی کا یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو میرے احساسات ہیں, جو میرے جذبات ہیں, جو میرے دیکھنے کا انداز ہے, وہ میرے لائف پارٹنر کا ضروری نہیں ہے وہی ہو یا ویسا ہی ہو. ہو سکتا ہے بالکل برعکس ہو, ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. اس لیے اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوگا تو ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی یا وہ پریشانیاں ہمیں نہیں ہوگی جو میاں بیوی کو اکثر زندگی میں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں, یا وہ شکایتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہے, مرد جنرلی فوکس کرتا ہے چیزوں کو. مثال کے طور پہ اگر ایک لباس ہے, کوئی خاتون کسی دعوت میں ایک لباس پہن کے آتی ہیں تو وہ خواتین اس کو پورا اسکین کر لیتی ہیں کہ اس نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے, آئے اس نے کون سے رنگ کی ایئر رنگ پہنا ہوا ہے, کون سی جویلری ہے, شوز کون سے ماڈل کا ہے, سارا اس کا دیکھ لیتی ہے. ایک ایک چیز بتا سکتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ چیزیں تھیں. لیکن مرد اگر کسی شخص کو دیکھتا ہے تو وہ صرف اس کو ایک جنرل لک پہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. شاید اس سے اگر بات کا پوچھے بھی کہ جس سے آپ بات کر رہے تھے اس شخص نے کون سے رنگ کا شرٹ پہنا تھا تو اسے یاد نہیں ہوگا. یا بہت سارے مردوں سے پوچھے کہ آپ کے گھر کے دروازہ کون سے رنگ کا ہے تو ان کو وہ سوچیں گے کلمے کے لیے کہ میرے مین گیٹ کا دروازہ کون سا رنگ کا ہے. وہ ایک جنرل عمومی طور پہ دیکھتے ہیں, خواتین ایک انڈیویجول طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ جب گھر کے اندر یہ کمبینیشن بنتا ہے تو یہ بہترین کمبینیشن بنتا ہے. مرد اس کو بڑے پیمانے پر اس کو پروٹیکشن کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے, خواتین اس کو ہر اسمال ایریاز میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی دید کا, اس طرح سے دیکھنا جو ہے ان کی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. یہ دونوں کا ڈفرینٹ ہونا اس لیے نہیں کہ دونوں میں کوئی اختلاف ہو جائے, نہیں, دونوں کمپلیٹ کر رہے ہیں دوسرے کو. اس طرح سے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے تو وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو. جو کمی میرے لائف پارٹنر میں اس کو میں پورا کروں, اور جو اس کے اندر کمی ہے اس کو میں پورا, وہ میرے اندر پورا کرے میں اسے پورا کروں. اس لیے مرد کے دیکھنے کا انداز ہمیشہ مختلف ہوگا, خاص طور سے جب آپ گھر کے اندر گھر کی ڈیکوریشن کی جہاں تک بات آئے گی تو دین یہ کہتا ہے کہ خواتین کی چوائس ہونی چاہیے, پریفرنس خاتون کو دینا چاہیے کہ وہ اپنے کچن کو کیسا بنانا چاہتی ہے یا وہ اپنے گھر کو کیسا رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ زیادہ تر وقت اس کو کچن میں گزارنا ہے, زیادہ تر وقت اس کو گھر کے اندر گزارنا ہے. تو اس کی ڈیکوریشن ہو اس کے پسند کی تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے میاں بیوی دونوں کا کلچر ڈفرینٹ ہو تو وہ چوائس بھی ڈفرینٹ ہو, لیکن کوئی بات نہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یا مرد زیادہ تر لاجیکل گفتگو کی بات کرے گا, ہمیشہ لاجک دینے کی بات کرے گا, دلیل مانگے گا, جبکہ خاتون نہیں دلیل نہیں دیں گی بلکہ وہ ایک احساساتی اور جذباتی انداز سے کسی چیز کو سوچوں گی. تو مرد کو ہو سکتا ہے قابل قبول نہ ہو. इसलिए अगर मुझे ये पता होगा कि ख्वातीन एहसास और जज्बात को ज़्यादा रखती हैं, तो मैं हमेशा उनकी बात को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूँगा कि अच्छा चाहिए इस तरह से सोच रही है तो इसका असर ये होता है ज़िंदगी में, ये इस तरह से देखती है, ना कि मैं अपने दलील के जरिए उनकी बात को रद्द करूँ तो अपनी बात मन पाऊँ कि मैं क्योंकि सही ही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ तो मेरी बात माननी चाहिए। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि ख्वातीन जल्दी कबूल करती हैं मर्द की बात को, वो जल्दी समझना चाहती हैं जल्दी जबकि मर्द ऐसा नहीं होता, मर्द नहीं कबूल करता, मर्द जल्दी नहीं कबूल करता ख्वातीन की बात को भी, यानी अपनी बीवी की बात को भी वो जल्दी नहीं मानता और बल्कि टाल देता है, या बहुत कम होता है कि वो अपनी बीवी की बात को जल्दी कबूल कर ले, क्योंकि उसके अंदर किसी भी चीज़ की बात को कबूल करने में उसको दलील चाहिए, रीज़न चाहिए ताकि उसको कबूल कर सके, जबकि ख्वातीन ईजिली मान लेती हैं या जल्दी एहसासाती हो जाती है, कोई फिल्म देखेंगी, कोई हादसा, कोई वाक़या सुनेगी तो उनको रोना भी आ जाएगा, उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी, जबकि शायद मर्द को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि जब बच्चा कभी खेल रहा होता है, इसको चोट लग रही होती है, तो माँ फौरन जाके कहती है कि हाय बच्चे को बचा लो जल्दी से चोट लग जाएगी, वो कहते हैं नहीं गिरने दो मजबूत कैसे होगा बच्चा, इसको नहीं फील हो रहा होता, लेकिन माँ को फील हो रहा होता है, माँ उसकी तकलीफ़ नहीं देख सकती, उसकी जो बच्चे के जो सेंसिटिव होता है बच्चा माँ के लिए उतना वो बाप के लिए भी होता है, इसके बाप ज़्यादा उसको रफ़ एंड टफ बनाने की कोशिश करते हैं, माँ उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे तो ईजी हो जाएगा माहौल, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये डिफरेंस नज़र आएगा, हमेशा माँ ये शिकायत करेगी अपने शौहर से कहेगी कि आप तो बच्चे की तरबियत का एहसास ही नहीं है, आपको उसका ख्याल ही नहीं है, जबकि मुझे उसका इतना ख्याल है, नहीं उसके देखने का अंदाज़ अलग है, आपके देखने का अंदाज़ अलग है। इसीलिए घर के अंदर भी अगर कोई वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, तो ख़वातीन उसको किसी और अंदाज़ से देख रही होती है, मर्द उसको किसी और अंदाज़ से देख रहा होता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे तो ये अंदाज़ ईजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मर्द ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी रफ़ एंड टफ हो, वो सख्ती और मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए बच्चे सीखे, बात चाह रही होती है कि नहीं इसको तमाम चीज़ें फराहम कर दे कि बच्चा आराम से सीख ले, क्योंकि ख़वातीन ख़ुद फितरतन ये चाहती हैं कि आराम और सुकून के साथ सारे काम हो, हर चीज़ ठीक हो जाए बगैर लड़ाई झगड़े के, मर्द के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, उसके लिए वो काम का होना ज़रूरी होता है, बस दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द एग्रेसिव होता है लेकिन ख़वातीन सेंसिटिव होती है, मर्द में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, ख़वातीन में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं होता, वो लड़ती नहीं है ज़्यादा, वो चाहती हैं कि पीसफुल अंदाज से कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल जो है पीसफुल अंदाज से हल हो जाए, लेकिन मर्द कहेगा नहीं कोई मसला नहीं, लड़ाई झगड़ा करना हो तो कर लेंगे, तो ये क्योंकि देखने का अंदाज़ अलग है, सोचने का अंदाज़ अलग है, ये दोनों इस लिहाज से डिफरेंट हैं, इसलिए अगर हमें डिफरेंसेस का अंदाज़ा होगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी, वरना हमें ज़िंदगी में मुश्किल आती है। मिसाल के तौर पर ड्रग्स है, अल्कोहल है, लड़के ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा जल्दी, लेकिन लड़कियाँ उसके मुकाबले में कम है, बहुत मतलब ईस्ट में तो बहुत ही कम है, लेकिन वेस्ट में थोड़ा बहुत ईस्ट के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन वह इतनी जल्दी नहीं होता। इसी तरह स्ट्रीट फाइट्स में भी आप देखेंगे लड़कों ही लड़ रहे होते हैं, ख़वातीन तो नहीं लड़ रही होती, क्योंकि उनके अंदाज देखने का सोचने का अलग है, ये अलग अंदाज होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपका जॉब दूसरा है, इसी तरह मर्द के लिए भी अच्छा है कि वो इस तरह का हो ताकि वो अपने काम में कामयाब हो सके, लेकिन ये दोनों का डिफरेंट होना है, दोनों के रिलेशनशिप को अपार्ट नहीं करता, उनको उनके अंदर डिस्टेंस पैदा नहीं करता, बल्कि उनको समझना होता है और उससे क्लोज हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इससे ज़्यादा चीज़ों को बयान करेंगे कि मर्द और औरत में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, ताकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए ईजी हो। मिसाल के तौर पर मर्द एक्सप्रेस नहीं करता लव को, हर वक्त नहीं बोलेगा अपनी बीवी से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और हर वक्त नहीं वो एक्सप्रेस करेगा, उसके अंदर नहीं है, जानता होगा कि मेरी बीवी मेरा ख्याल रखती है या मुझे उससे मोहब्बत है, उसको पता है, लेकिन बोलेगा नहीं, जबकि आप चाहेंगी कि वो बार बार बोले, हर दफ़ा इस बात को कहें, क्योंकि आप एनर्जाइज इन चीज़ों से होती हैं, आपको खुशी मिलती है, आपको कुव्वत मिलती है जब आपको मम्मी एक्सप्रेस करता है, लेकिन वो होते ही नहीं एक्सप्रेस, तो आपको लगता है क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा, मैं तो इतनी तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, ये अभी तक एक्सप्रेस नहीं करते, या गिफ्ट नहीं ला के देते, कभी साल में बर्थडे में ले आते हैं या कभी ले आते हैं, कभी देते ही नहीं, कि कैसे इंसान है, इनके अंदर एहसास और जज्बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मर्द है ये सब उसके अंदर नहीं है, ये तो उसको सिखाया जाता है बहुत, उसे सुनाया जाता है, तो फिर वो जाके ये काम करता है, वरना नॉर्मली ऐसे नहीं होते मर्द। तो अगर आपको पता होगा कि मर्द नॉर्मली ऐसे नहीं होते तो आपको शिकायत भी नहीं होगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बहुत अफसोस होगा कि मेरे हस्बैंड शायद उनके नेचर में नहीं है, नहीं वो मर्द के नेचर में नहीं है, बहुत कम है। मगर ये कि वो आदमी ट्रेंड हो, वो आदमी क्लासेस लिया हो, एजुकेटेड हो, उस हवाले से तो वो फिर हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, बना मुझे रखेंगे। पहले मैंने इस क्लास में लास्ट क्लास में बताया था कि एक कपल था, उनकी नई नई शादी हुई, हस्बैंड उनके चले गए दूसरे मुल्क, और शादी के कुछ दिन बाद, जाने के 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया अपनी वाइफ को भी, भाई कैसी हो, खैरियत से हो, ये कहाँ हैं आप? बहुत ही परेशान अंदाज में पूछा, 2 दिन से आपने खबर नहीं ली, मैं आपको इतना मिस करती रही और रात दिन ये वो, तब तो हो मह तो इतना आपसे बिजी, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको कॉल करता और मैं अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर रहा था, ये था वो था। तो लगा आपको मेरी एक दिन भी याद नहीं आई? उसने कहा नहीं, मैं इतना बिजी था, मुझे याद ही नहीं आई। तो उसको लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में उनसे कि मैं आपको 2-3 दिन तक एक लम्हा भी नहीं था ऐसा कि जिसमें मैंने आपको मिस ना किया, और आप कह रहे हैं तुम्हें 2 दिन तक तुम मुझे याद ही नहीं आई, मैं काम हूँ बिजी। तो आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? अब उसके लिए मुश्किल हो गया समझाना कि नहीं, आप अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, काम भी तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं गया हूँ। नहीं, क्योंकि ख़वातीन के देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सका उस मसले को, जबकि वो सच बोल रहा था। लेकिन सच्चाई की बात अभी आएगी आगे जो आज करनी है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मर्द उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है अपने काम में जितना बीवी अपने मियाँ के लिए सोचती है, वो अपने काम के लिए उतना सोच रहा होता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि कभी आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है, आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है कि आपके मी ऑफिस गए हुए और आप उनको SMS कर दें या एक ईमेल भेज दें या फ़ोन कर दें, आप ऐसा करती हैं नहीं करती, उसका रिटर्न में वो कितना करते हैं आप, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं ये मेरे अंदर है ये चीज़ कि मुझे ज़्यादा करना है, उनके अंदर नहीं। हो सकता है बाज़ मर्दों को तो बुरा भी लगता है, वो डांट देते या सुना देते हैं फ़ोन करके कि क्यों डिस्टर्ब कर रही हो और ये वो इस तरह की चीज़ें, या बास लोग इंसल्ट समझते हैं। बाज़ ऐसा हुआ है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मौका मिला तो वहाँ पे मर्दों ने आगे कहे कि मैं तो अपनी बीवी को डांट देता हूँ, बल्कि मेरी इंसल्ट होती है, मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि यार तुम तो अपनी बीवी के कंट्रोल में हो, वो तुम्हें तुमको फ़ोन करके तुम उसका जवाब देते हो और तुम अपने काम के बाद कंसर्न करो उससे। तो बास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ वो ये काम नहीं कर सकते, बास के अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो ये हमें देखना होता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरे एहसास और मेरे जज्बात जो है वो कहाँ मुझे यूज़ करने, कहाँ यूज़ नहीं करने, कहाँ ज़्यादा करने, कहाँ कम करने, हर चीज़ को बैलेंस करके अगर आप चलेंगी तो फिर सक्सेसफुल लाइफ होगी, वरना अगर आप अपने ही हिसाब से हर चीज़ को देखेंगी तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ आदतें ऐसी हैं जो हर मियाँ बीवी को चेंज करनी होती है या उसको मॉडिफाई करना होता है या उसको अडॉप्ट करना होता है, क्योंकि दोनों की रिलेशनशिप का डिमांड ये होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता, यानी आपका शौहर भी जानता है कि वो ये काम नहीं कर सकेगा, और उसे कह देगा कि इस मामले में आप मुझे टच नहीं करें, आप मुझे कुछ ना कहें, यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आपको चैलेंज नहीं बनाना इसको कि नहीं ये तो मैं करके दिखाऊंगी, या ये कि आप ये सोचे कि ये मेरी अदा का मसला है, ये मेरे ईगो का मसला है कि ये इन्होंने कैसे कह दिया नहीं। बात चीज़ें इंसान नहीं कर पाता, जब तक बात चीज़ आप भी नहीं कर सकती होगी, आप कहेंगे कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप नहीं कर पा रही होंगे। बात बहुत रेयर होता है कि इंसान की खुद की पर्सनैलिटी इतनी करिश्माटिक हो कि वो सामने वाले को चेंज कर दे, उसके अंदर एक इनकलाब ले आए, वरना नॉर्मली नहीं होता। इसलिए हम लोग जब लाइफ को देख रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मेरी लाइफ इस वक्त है, जो मेरी पर्सनालिटी इस वक्त है, वो इस तरह की नहीं है कि वो सामने वाले के अंदर इतनी सारी चेंजेस पैदा कर दे। क्योंकि अगर जब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मियाँ बीवी आते हैं और वो अपने प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ को डिस्कस करते तो वहाँ यही बात होती है, मियाँ बीवी के दरमियान यही बात होती है कि वो कहते हैं कि इनको कहीं चेंज हो जाए, मैं इनको समझाता हूँ लेकिन ये समझती नहीं, जबकि मेरी बात इतनी लॉजिकल है, ये है वो है। तो देखिए, जो आपकी शख्सियत है इस वक्त उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है कि सामने वाले को चेंज कर सके, चाहे आप लॉजिकल बात करो, चाहे आप कुछ भी बात करो,
बस दफ़ा सामने वाले में इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो चेंज हो सके, तो टाइम लगता है, अपने आप को भी डेवलप करना होता है, सामने वाले को भी अपने आप को डेवलप करना होता है जब चेंज आता है, वरना चेंज नहीं आ सकता, इतने आसानी से चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी शख्सियत में इतनी पावर नहीं है कि आप सामने वाले को मोल्ड कर सके उस तरह से जिस तरह से आप चाहें, क्योंकि जो अभी आप हैं वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है, उस तरह से नहीं। तो आप अपने अंदर कुछ चेंज लाएंगी तो फिर यहाँ पे भी चेंज आएगा, वरना इस पर्सनालिटी के साथ जो कुछ आप ख्वाब देख रही हैं, कोई भी ख्वाब देख रहे हैं पर वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हो पा रहा। मिसाल के तौर पर मर्द को नहीं पसंद है कि उसको आप बार बार एक बात कहें, बार बार एक बात कहें, उसको पसंद है कि उसकी उसकी उसको एक दफ़ा आप एक बात कहें और सॉलिड अंदाज में कहें और फिर वेट करें कि वो उस काम को अंजाम दे दें, लेकिन आप भी मजबूर हैं, आपको बार बार कहना पड़ेगा जब आप सेटिस्फाई होंगी कि हाँ मैंने इनको इतनी दफ़ा कहा है अब तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर शौहर को पता होगा कि बीवी का बार बार कहना रेपिटेशन जो है उसकी बात ही है उसकी आदतों में से, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसको समझ लेगा और ईजीली हैंडल करेगा। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कुछ इश्यूज दिए थे कि आप जाके अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में या ख़ानदान की रिलेशनशिप में, आप ये देखें कि कौन कौन से कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं हमारी ज़िंदगी में, वो कॉमन गोल्स हमारे कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम दोनों मिलकर करना चाहते हैं, हम दोनों का उस पर इत्तेफाक है, हम दोनों के लिए वो चीज़ रियल है। आपने सोची, आपने देखा, कुछ डिस्कवर किया।
The main similarity is that we both want to be near home, want to study together, want to grow that way.
Mm-hmm.
That's a major, major similarity. And the difference,
it's not important to talk difference, but then one thing is there should be, apart from this goal, there should be other goals also,
mm-hmm,
in different areas of life.
For us, it's similar. I mean, we're in home for a short period of time, but we both want to come to get a better understanding of ourselves and a better understanding of Allah, inshallah. My different, I guess in the short term, different goal is I'm really working on trying to improve my Quran recitation and working on the kids, their studies. His goal is more, he's learning Farsi and, you know, his goal is outside the house, making sure there's financial needs are met. Not so concerned with the kids because he feels like I'll handle that.
Mm-hmm.
Also, physical fitness is one of his goals. That's not important to me.
Mm-hmm.
But I guess the big picture, we're both trying to become a little bit more religious and trying to for our kids, I guess, and for ourselves.
Okay. अच्छा, अब हम लोग दूसरे step पे जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने जो आपको काम दिया था उसमें आपने सोचा, लेकिन आपने 1% काम किया, बहुत सारे अभी चीज़ें आपने नहीं सोची। यानी अगर आपने लाइफ को, हमने उसके तीन बड़ी डिविजन्स की थी, एक फिजिकल, एक इंटेलेक्चुअल और एक सोशल। इंटेलेक्चुअल से मुराद मेरी वो इमोशंस थी जिसमें फीलिंग्स वगैरह आ जाएंगी। आपको ये देखना है कि एक एस्पेक्ट से जब आप देखेंगे लाइफ को, तो आप देखेंगे हमारे फिजिकल हवाले से कहाँ कहाँ हम लोग मैच करते हैं फिजिकली, हम लोग किन एरियाज ऑफ लाइफ को, जिसमें पूरा आपका फिजिकल डाइट वगैरह सब कुछ आ जाता है, आपकी तमाम चीज़ें आएंगी इसमें, इमोशन हवाले से, सोशल हवाले से, फिर इससे आगे आप बढ़ेंगे, ये एक डिपार्टमेंट था, फिर फाइनेंशियल हवाले से, फाइनेंशियल गोल्स क्या है आपके, मियाँ के हवाले से, आपका प्रोफेशन के हवाले से क्या है, इस तरह आप पहले बड़े बड़े 8-9 डिविजन्स बनाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको वैसे गिनवाता हूँ, एक चीज़ है फैमिली, खुद फैमिली के बारे में आप लोगों का कॉमन गोल क्या है, एक स्पिरिचुअल हवाले से आपका कॉमन गोल क्या है या नहीं है, इंटेलेक्चुअल हवाले से क्या है, फिजिकल हवाले से क्या है, इन्वायरमेंट के हवाले से क्या है, एजुकेशन के हवाले से क्या है, बच्चों के हवाले से क्या है,
इस तरह के आप तमाम चीज़ों को आप देखेंगी कि आप लोग कहाँ कहाँ इन एरियाज में कहाँ कहाँ कॉमन है और कहाँ कहाँ आप लोग मीट कर सकते हैं। जब आप 8, 9, 10 एरियाज पे आप लोग फोकस करेंगे अभी, तो फिर कुछ में जाके आपको सिमिलैरिटी मिलेगी कि अच्छा यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं सोचते। तो जब हम लोग इस एरियाज में नहीं सोचते तो इसका क्या असर हो रहा है हम लोग की ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उन एरियाज पे काम करेंगे तो फिर जो काम आप करना है वो है मशवरा करना। मोहब्बत जो पैदा होती है, जो मोहब्बत पैदा होती है, बढ़ती मोहब्बत मियां बीवी के दरमियान, वो एक दूसरे से मशवरा करना है। हम सब लोग मशवरा करते हैं, लेकिन इसमें नई बात क्या चीज है? Taking advice. You have to share your thoughts and ideas with your life partner. लेकिन हम लोग जो मशवरा करते हैं तो उसमें जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट कर देते हैं और फिर सामने वाले से कहते हैं कि ये मैं चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तो मैं चाहता ही हूँ, आपको हाँ करनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको आपका क्या ख्याल है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि ये मैं करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करेंगी या नहीं करेंगी। जबकि मशवरे का मकसद ये होता है कि आप एक चीज़ के बारे में कि जो आप इरादा करती हैं, आप उस मौजू को पुट करती हैं, ना कि आप अपनी फीलिंग्स को बताती हैं। इस बात को मैं बाद में क्लियर करूँगा, पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा। यहाँ हम लोग जो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें हम फ्लाई कब करते हैं? जब हम फिक्र करते हैं, जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं, फिक्र करते हैं और फिर हम अमल करते हैं, तो हम फ्लाई कर सकते हैं, हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी आज़ादी होनी चाहिए आपकी सोच को, आपकी फिक्र को, कि आप जो कुछ भी सोचना चाह रही हैं वो सोचें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सोचने में कोई हर्ज नहीं है, आप सोचें, अच्छा सोचें, ठीक है। डायरेक्शन इस्लाम ने दिया, हम इसी के अंदर बात कर रहे हैं। जैसे परिंदे को उड़ना है, उसकी विंग्स जो है वो उसको फ्लाई करवाती है। अब उसकी विंग्स जितनी स्ट्रांग होंगी उतनी उसकी हाइट ज़्यादा जाएगी, फ्लाई उतना ऊंचा करेगा वो। उस परिंदे की, उस बर्ड की जो अहमियत है वो इसी वजह से है कि उसके अंदर एक परवाज ज़बरदस्त है, उसका शिकार बहुत ज़बरदस्त है, या उसका काम बहुत अच्छा है, उसकी फ्लाई करने की वजह से उसकी एक शख्सियत है। इसी तरह इंसान की शख्सियत भी इसी तरह है कि उसकी फिक्र कितनी बुलंद है और उसका अमल कितना अच्छा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम ये कहेंगे ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान हाई कैलिबर का है, क्यों? क्योंकि इसकी फिक्र भी बहुत अच्छी है, इसका अमल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक चीज़ अच्छी हो और एक चीज़ नहीं हो तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगी, वो परवाज़ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसलिए इंसान जब सोचता है और वो फ्लाई करता है अपनी दुनिया में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और जब वो लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आता है तो वहाँ पे आके वो ये देखता है कि वो चीज़ें नहीं कर पा रहा जो वो सोच रहा था, क्योंकि फिक्र के अतबार से वो फ्लाई करता रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने पर आता है वो नहीं कर पाता। यानी मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम ये होता है कि मियाँ बैठ के अपने हिसाब से सोच रहा होता है कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, आफ्टर 5 ईयर्स हम लोग ये यहाँ पहुँच जाएंगे। बीवी भी ऐसा सोच रही थी कि मेरा मियाँ यूँ करेगा, बच्चे ऐसे होंगे, वैसा होगा, यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब दोनों रियलिटी में आते हैं तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर तकलीफ होनी शुरू होती है। जो मैंने अपनी एक दुनिया बनाई थी, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद या अभी भी, उस दुनिया में मैं खुद तो उड़ रहा हूँ लेकिन मेरी फैमिली नहीं है उसमें मेरे साथ। तो क्या होगा अगर मैंने सही काम नहीं किया? तो क्या होगा, या तो मैं अपनी फ्लाई करना शुरू हो जाऊंगा और मैं अपनी बीवी से कहूँगा तुम अपनी फ्लाई करो, हम दोनों एक ही एयरप्लेन में नहीं बैठेंगे, हम दोनों अपने अपने फ्लाइट खुद ही उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब आपने शादी कर ली है, शादी के बाद आपके म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मियाँ बीवी दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाएं कि हम लोग क्या करेंगे, ये फिक्र हम वाली होनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी फिक्र ये होगी कि तुम्हारा और मेरा, तो फिर शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा।
वो अपना इफेक्टिव नहीं रहेगा फैमिली के अंदर, वो सक्सेसफुल फैमिली की तरफ नहीं जा पाएंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग एज एन इंडिविजुअल हैं, आप और मैं. आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ. ठीक है, पर्सनल गोल्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, आपका हस्बैंड फारसी सीखना चाहता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन जब हम घर की बात करते हैं, घर के अंदर की बात करते हैं, तो हमारे कुछ म्यूचुअल गोल्स होने चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हम बनाएं और वो दोनों मिलकर करें. जिस तरह स्कूल्स में आपको असाइनमेंट दिया जाता है और वो ग्रुप वो असाइनमेंट करता है, उसके अंदर कितना मजा आता है. सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब अपना अपना रोल मिलकर प्ले कर रहे होते हैं, चीज़ बना रहे होते हैं, या वो कोई साइंटिफिक चीज़ होती है या कोई भी स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं. तो जब पार्टिसिपेशन दोनों की मिलकर होती है तो लाइफ में मज़ा आना शुरू हो जाता है. वो मियाँ बीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वही उनके अंदर मोहब्बत पैदा करती है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है और स्ट्रॉन्ग करती है उस बॉन्ड को कि जो उन दोनों ने एक दूसरे के लिए बनाया है. जैसे बच्चा जब दुनिया में आता है तो मियाँ बीवी की कॉन्सेंट्रेशन अगर शादी से पहले इधर उधर भी जा रही होती है तो वो बच्चे की वैसे फोकस्ड हो जाती है कि अच्छा अब हम लोग को बच्चे के ऊपर काम करना है. तो एक बहाना मिल जाता है दोनों को कि दोनों मिलकर बच्चे की बातें करें और बच्चे की खूब बातें करते हैं, बच्चे को डिस्कस करते हैं. बस दफ़ा उसी पर लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर देते हैं, बच्चे के इशू पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है. लेकिन बस दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि उस बच्चे के इशू पर दोनों नज़दीक आ जाते हैं, दोनों शेयर करने लगते हैं, बात करने लगते हैं उसके बारे में, फिर दोनों एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि अब वो एक सेंटर पॉइंट ऐसा आ गया जिसपे दोनों का की रियलिटी है, दोनों उसको अपना कॉमन डिनोमिनेटर मानते हैं कि हाँ इस पे वी हैव टू एग्री अपॉन कि इस पे क्या करना है. हमारे अपने अपने डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन ये बच्चा हमारा सेंटर पॉइंट है. लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी और एरियाज ऑफ लाइफ में डिफरेंसेस रहेंगी तो ये इसका इफेक्ट इस बच्चे पे आएगा, वो नजर आएगा. वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा वो ऑब्जर्व करने लगेगा कि अम्मी अब्बा इतने सारे इश्यूज में अलग अलग है, एक दो इश्यूज में एक जैसे, तो वो डिस्टर्ब होगा. फिर वो बच्चा कुछ रिएक्शंस देगा, वो चिड़चिड़ाएगा ज़्यादा, रोएगा ज़्यादा, हर वक्त चाहेगा कि माँ उससे बस लिपटा के अपने गले से रखे, या बाप आए तो वो उसको ज़्यादा हर वो ज़्यादा अटेंशन फिर मांगेगा, ज़्यादा आम बच्चों से ज़्यादा अटेंशन मांगेगा वो बच्चा. माँ बाप भी परेशान होंगे, आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, हर वक्त गोद में चढ़ा जाता है या चढ़ी रहती है मेरे गोद में हर वक्त अटैचमेंट, ये क्या प्रॉब्लम है. उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रॉब्लम इसलिए कि वो माँ बाप को एक दूसरे से क्लोज नहीं देख रहे, ना मेंटली ना इमोशनली ना किसी भी हवाले से, वो लोग दे आर डिफरेंट. तो इस वजह से बच्चा अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में फील करता है कि जहाँ वो सेंस ऑफ पीस नहीं उसको मिलता, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अब हम जो बात कर रहे थे, जो हमने पहले दिन आपसे बात की थी, वो बात की थी एतमाद की, ट्रस्ट की. उस ट्रस्ट को एक और अंदाज से हम देख रहे हैं लेकिन किसी और टॉपिक के साथ. उससे पहले कि हम उस टॉपिक को लेकर आए, उसको डिस्कस करें, जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि मियाँ बीवी जो भी काम करते हो एक दूसरे से मशवरा करते हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का एडवाइस देते हो और ओपन हार्ट हो. ऐसा नहीं होगा अगर मियाँ मना कर दे तो बीवी को बुरा लगे और बीवी मना कर दे तो मियाँ को बुरा लगे. मशवरा करें, और मशवरा करने से क्या होता है, जब आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, क्या होता है आप बताएं. अगर मियाँ बीवी से एडवाइस लेगा, उसे मशवरा करेगा किसी भी इशू में, तो क्या होगा उनकी रिलेशनशिप में, क्या चीज होगी? एतमाद ज्यादा होगा, रिश्ता ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. अगर एग्री करते जाएंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, अगर डिसएग्री करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी.
At least you know what the other person's thinking. You're aware
more. Right. सबसे पहली चीज ये होती है जब हम किसी से मशवरा करते हैं और ओपन हार्टेडली मशवरा करते हैं तो हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसका एहतराम कर रहे होते हैं, उसको पता चलता है कि आई एम इम्पॉर्टेंट, मेरी एक इम्पॉर्टेंस है जब भी मुझसे पूछा जा रहा है. पहली चीज़ तो ये होती है. दूसरी चीज़ ये होती है कि जब सामने वाला आपको एडवाइस देता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, तो आपको अपनी नातावानी का पता चलता है,
आपको पता चलता है कि देयर इज सो मच लैकिंग इन मी, कि मेरे अंदर इतनी सारी कमजोरियां हैं, मैं वीक हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पता ही नहीं है, यही मुझे अच्छा नहीं समझ में आया था, यही मैं इस बात को नहीं जाना था, लेकिन मशवरे से मुझे पता चला कि ओहो ये भी चीज़ें थी जो मुझे पॉइंट आउट करनी थी। मशवरा हमेशा करना चाहिए, मशवरा करने से आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसमें आपकी इंसल्ट नहीं है, मियाँ और बीवी की कहीं पर भी इंसल्ट नहीं हो रही कि मैं पूछूंगी और मुझे अगर उसने बताया कि तुम ये ऐसा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं फिर हार गई। बस खवातीन मर्द ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने पूछा और मैं नहीं कन्विंस कर सकी तो मैं हार जाऊंगी। बाप बेटा भी ऐसे करते हैं बस दफ़ा, बाप बेटा कन्विंस करना चाहता है, बेटा कन्विंस नहीं होता, बाप सोचते मैं हार गया। और तो ये कोई घर है, ये कोई जंग का मैदान नहीं है जहाँ हार जीत हो रही है, ये घर है। घर के अंदर एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है और दूसरे के आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखना होता है। इसलिए पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपको अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेसेस, अपनी नातवानी का पता चलता है सामने वाले के मशवरे से। दूसरा ये होता है कि एक ट्रस्ट और कायम होता है, रिस्पेक्ट मिलता है और एक सेंस ऑफ पीस हासिल होता है जो आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक सेंस ऑफ पीस मिलता है कि ओके सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, इसीलिए उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया कि उसने मुझसे पूछा है कि आपका क्या ख्याल है, इस काम को कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए। अब करना क्या है, नतीजा क्या लेना है, नतीजा हमें यहाँ ये लेना है कि सबसे पहली चीज़ है वो इशू, वो चीज़ कि जिसके बारे में मशवरा करने जा रहे हैं, ये देखना है, उसको डिस्कस करना है। यानी आप मियाँ बीवी का काम यह कि कोई भी चीज़ आप करना चाहती हो आप पहले से उसका नतीजा ना निकाल रहे, अपने अपने हिसाब से आप जरूर सोचेंगे मैं ये करना चाहती हूँ उसकी ये रीजंस हैं, लेकिन जब मियाँ के साथ उसको डिस्कस करें या बच्चों के साथ उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले उस इशू को शेयर करें अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं और वो उनकी ज़रूरत की चीज़ है तो फिर, वरना आप मियाँ बीवी का मामला है तो ठीक है, तो उसको डिस्कस करें। क्या करें वहाँ पर, उसको इवेल्यूएट करें कि आया ये चीज़ जो मैं करना चाह रही हूँ ये चीज़ सही है या नहीं, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं कि क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी मदद करो ये काम होना चाहिए, नहीं ये इस तरह ख़राब हो जाएगा। आप एक अपना इरादा शौक जो भी आप बताएं फिर उसको डिस्कस करें, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या, और कोशिश करें कि यूनिटी के साथ ये ख़त्म भी हो, ना कि डिफरेंस में ख़त्म हो, बल्कि दोनों एक ऐसे नतीजे में पहुँचे जिसमें दोनों का इत्तेहाद इत्तेफाक हो जाए। अगर आप इस तरह काम करने लगेंगे कि आप को नतीजा इसका पॉजिटिव निकालना है या सही निकालना है इस बात पर कि दोनों एग्री हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ जल्दी जल्दी इम्प्रूव करेगी, यानी मियाँ बीवी में ज़्यादा तेज़ी के साथ मोहब्बत पैदा होगी, फिर आप उस पर अमल करें। लेकिन अगर आप किसी भी इशू पे आप दोनों नतीजे पे नहीं पहुँचते, हमेशा डिफरेंट होता है, तो फिर इसका मतलब है कि किसी एक को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पहले, क्योंकि नहीं मिल रहे, हमारा आइडियाज़ डिफरेंट है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कहाँ सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, कहाँ पसंद का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उसको फिर कैसे मिलाया जाए। वो जैसे हमने बताया था वो ग्रे एरिया आपको ढूंढना पड़ेगा, वो ग्रे एरिया कौन सा जहाँ पे हम लोग मीट कर लें, ना ब्लैक है ना वाइट है, बीच का एरिया जो ग्रे है उसको ढूंढना है, क्योंकि मियाँ बीवी का डिसीजन एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि हो सकता है कि मियाँ कन्विंसिंग पावर ज़्यादा रखता हो, वो कन्विंस कर ले, और एक दफ़ा बीवी सोचे कि हमेशा मुझे ही मानना पड़ता है, ये अपनी बात कन्विंस करवाते हैं मुझे ज़बरदस्ती, तो ठीक है आप उसको इमोशनली भी बैन कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिटी नहीं होगी और डिसीजंस एक आदमी लेगा घर का, चाहे वो बीवी हो या मियाँ हो, अगर इस तरह डिसीजंस होने लगेंगे तो ये खतरे की तरफ आप आगे जा रहे हैं। क्या होगा कि होपलेस हो जाएगा कोई भी एक शख्स घर का। यानी अगर बीवी ये कहे, फर्स्ट करें बड़ी फैमिली है और फैमिली के अंदर जो है वो अभी नई नई दुल्हन शादी होकर आई, उसको नहीं पता इस घर का माहौल कैसा है। अब कोई भी घर में बात होती है तो उस पर लड़की के जो ससुराल वाले हैं वो सब एक तरफ हो जाते हैं और लड़की एक तरफ हो जाती है, और वही